ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जये मुदीरये गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 35 श्लोक क्रमांक 16 और 17। ये जो श्लोक है अलग राग में, उसका छंद अलग है तो उसका राग भी थोड़ा अलग है। मैं उसको गाने का अभ्यास कर रहा था लेकिन जो मूल राग में है वो सीख नहीं पाया, और फिर हम जो रेगुलर ट्यून में गाते हैं उसी में गाने का प्रयास कर रहा था तो ट्यून पुरानी वाली ट्यून में चली जाती थी, तो दोनों भी मिक्सिंग हो गया। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, आप लोग भी प्रयास कीजिए मेरे पीछे। निज पदाब्ज दलेर ध्वज वज्र निज पदाब्ज दलेर ध्वज वज्र निरजांकुश विचित्र ललामे विरजांकुश विचित्र ललामे व्रज भुवः शमयन् खुरतोदम् ओदम् व्रज भुवः शमयन् खुरतोदम् वर्ष्मधूर्य गतिरीडित वेणु वर्ष्मधूर्य गतिरीडित वेणु व्रजति तेन वयं सविलास व्रजति तेन वयं सविलास व वीक्षणार्पित मनोभव वेगा वीक्षणार्पित मनोभव वेगा कुजगतिं गमिता न विदाम कुजगतिं गमिता न विदाम कश्मलेन कवरं वसनं वा कश्मलेन कवरं वसनं वा आप अलग ट्यून में भी गा सकते हैं गाएं निज पदाब्ज दलेर ध्वज वज्र निरजांकुश विचित्र ललामे व्रज भुवः शमयन् कुरतोदम् वर्ष्मधूर्य गतिरीडित वेणु व्रजति तेन वयं सविलास वीक्षणार्पितम् कुजगतिं गमिता न विदाम कश्मलेन कवरं वसनं वा निज पदाब्ज दले ध्वज वज्र निरजाकुश विचित्र ललामे व्रज भुवः शमयन् कुरतोदम् वर्ष्मधूर्य गतिरीडित वेणु व्रजति तेन वयं सविलासं वीक्षणार्पित मनोभव वेगा कुजगतिं गमितान विदाम कश्मलेन कवरम् माताजी पदाब्ज दले ध्वज वज्र निरजांकुश विचित्र व्रज भुवः शमयन् कुरतोदम् वर्ष्मधूर्य गतिरीडित वेणु व्रजति तेन वयं सविलास वीक्षणार्पित मनोभव वेगा कुजगतिं गमिता न विदाम कश्मलेन कवरं शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए, निज अपने पद अब्ज चरण कमलों के, दले फूलों की पंखुड़ियों जैसे, ध्वज पताका वज्र वज्र, नीरज कमल अंकुश तथा अंकुश का, विचित्र भांति भांति के, ललामे चिन्हों से, व्रज व्रज की, भुवः भूमि को शमयन शांत करते हुए, खुर गाय के खुरों से, तोदम पीड़ा वर्ष्म अपने शरीर से, धूर्य जिस तरह हाथी की, गति चाल ईडित प्रशंसित, वेणु जिसकी वंशी, व्रजति चलता है, तेन उससे, वयम हम सविलास क्रीड़ा युक्त, वीक्षण चितवन से, अर्पित अर्पित, मन भव काम वासना का, वेगा मंथन कूज वृक्षों जैसी, गतिम चाल गति का अभाव, गमिता प्राप्त किया हुआ, न विदाम हम नहीं जान पाती, कश्म लेना अपने मोह के कारण, कवरम चोटी वसनम अपने वस्त्र, वा अथवा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। अनुवाद, जब कृष्ण अपने कमल दल जैसे पांवों से व्रज में घूमते हुए घूमते हैं, तो भूमि पर पताका वज्र कमल तथा अंकुश जैसे प्रतीकों के स्पष्ट चिन्ह बनते जाते हैं, और वे पृथ्वी को गोवों के खुरों से अनुभव होने वाली पीड़ा से प्रशमित करते हैं। जब वे अपनी विख्यात बांसुरी बजाते हैं, तो उनका शरीर हाथी की अदा में झूमता है। इस तरह हम गोपियाँ, जो कृष्ण की विनोद प्रिय चितवन के कारण कामदेव द्वारा चंचल हो उठती है, वृक्षों की तरह स्तब्ध खड़ी रह जाती है, और हमें अपने बालों की लर अर्थात लट तथा वस्त्रों के शिथिल पड़ने जाने की भी सुध-बुध नहीं रह जाती। तात्पर्य, यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने माधुर्य आकर्षण का वर्णन कर रही है, किंतु अब माता यशोदा उनके साथ नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी तथा अन्य आचार्यों की टीकाओं से यह स्पष्ट है कि इस अध्याय के कथन विभिन्न अवसरों तथा स्थानों पर व्यक्त हुए यह स्वाभाविक है, क्योंकि गोपियाँ अहर्निश श्री कृष्ण के विचारों में सदैव मग्न रहती थी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम आप सभी वैष्णव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रसंग हमारा चल रहा है वेणु गीत। गोपियों के द्वारा परस्पर कृष्ण की वेणु के बारे में जो चर्चा हुई है उसी को वेणु गीत कहा है। और ये श्लोक दो दो के जोड़े में वर्णन हुए है इसलिए युगल गीत भी कहते, युगल अर्थात जोड़े में। और अलग अलग समय पर अलग अलग जूथों में गोपियों ने वेणु की जो चर्चा की है उसी को यहां पर एक साथ कहा गया है। अर्थात ऐसा नहीं है कि एक ही समय में गोपियों ने एकत्र होकर वेणु के बारे में जो चर्चा की है उसको लिखा गया है। अलग अलग समय की घटनाओं को वर्णन को एक साथ में यहां पर वर्णन किया गया है। गोपियां जो हमारे भक्ति के मार्ग की परम प्रमाण है, भक्ति मार्ग की आचार्य जिसको मानी है, भक्ति का स्वरूप क्या है? शुद्ध भक्ति या कृष्ण प्रेम का स्वरूप क्या है? तो नारद जी ने भक्ति सूत्र में इतना ही कहा, यथा व्रज गोपी का नाम। व्रज की गोपियों के जीवन को देख लीजिए, उसकी जो क्रिया है वही शुद्ध भक्ति है। गोपियां मूर्तिमंत भक्ति स्वरूपा है, यथा व्रज गोपी का नाम। और यही सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। महाप्रभु ने हमें व्रज भक्ति सिखाई है, व्रजवासियों के भाव से कृष्ण की आराधना करना। और व्रजवासियों में भी सर्वश्रेष्ठ है गोपियां। गोपियों ने जिस प्रेम मार्ग पर चलते हुए कृष्ण की सेवा की है उसी मार्ग पर चलना महाप्रभु का यह शिक्षा है। महाप्रभुर मदम इदम रम्या काचित व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादर न पर। यही बात कही है। तो जिस गोपियों के मार्ग पर चलते हुए हम कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, ऐसी इच्छा हृदय में लेकर हम साधना में भजन में लगे हैं, उन गोपियों के जीवन में देखा जाता है कि उन्होंने तीन ही क्रियाएं की है। गोपियों के जीवन में तीन ही क्रियाएं पढ़ने में सुनने में आती है। क्या? कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण सेवा। अर्थात यथा व्रज गोपी का नाम शब्द का अर्थ करेंगे शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं, तो व्रज की गोपियों ने जो किया उसे ही शुद्ध भक्ति या कृष्ण प्रेम कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण सेवा, इसी को भक्ति कहेंगे, शुद्ध भक्ति। कृष्ण के नाम में गोपियों की कैसी प्रीति थी, भागवत में यत्र तत्र वर्णन है कि गोपियां अपना एक एक कार्य करते हुए, घर के सारे कार्यों को करते हुए निरंतर मुख से कृष्ण नाम कीर्तन उच्चारण करती रहती थी। या दोहने अवहनने पथनोपलेपे प्रेंखेंखना अर्भरुदितो उक्षण मार्जनादो। गायन्ति चैनम अनुरक्त धिया धन्याः व्रजस्त्रियः उरुक्रम चित्तयानः। गोपिया गोदोहन करते समय, दोहने अवहनने मंथन करते समय, पथनोपलेप दान कूटते समय, घर का लिपण इत्यादि कार्य करते समय, अपने रोते हुए बच्चे को शांत करते समय, पति की सेवा करते समय, स्नान उक्षण मार्जन आदो, घर की सफाई करते समय, एक एक कार्य को करते समय कृष्ण नाम का उच्चारण कृष्ण कीर्तन करती रहती थी। इसलिए कहते धन्या व्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्तया। धन्य है व्रज की स्त्रियों को जिसकी जिह्वा पर निरंतर उरुक्रम भगवान कृष्ण स्फुरित होते रहते थे। और बिलोमंगल ठाकुर जी ने यहां तक वर्णन किया है कि गोपियां अपने घर में जो शुक सारिका इत्यादि पक्षी थे उनको भी कृष्ण नाम रटन कराती थी, गोविंद दामोदर माधवे थी। तो ये गोपियों की क्रियाएं थी, कृष्ण नाम निरंतर उसकी जिह्वा पर रहता था। और दूसरा कृष्ण सेवा, गोपियां अपनी एक एक क्रियाएं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के सेवा के लिए ही करती थी। अपने घर में मक्खन बनाती थी, ताजा मक्खन बनाकर रखती थी। इसी भाव को रखकर, इसी भाव को लेकर के कृष्ण अपने सखाओं के साथ आएंगे और मेरे द्वारा बनाए हुए मक्खन का भोग लगाएंगे। और सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिन मन की जानी, भगवान अंतर्यामी हैं। श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी निताय गौर सुंदर शिल प्रभुपाद की। सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिन मन की जानी, भगवान अंतर्यामी है। उन गोपियों के अंतर के भाव को जानकर ही उसके घर में जाकर उसका माखन चुरा कर खाते थे। अपना श्रृंगार गोपियां करती थी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, एक एक क्रियाएं। भगवान ने स्वयं गोपियों की सेवा के बारे में वर्णन किया है। उद्धव जी को जब व्रज में भेज रहे थे, व्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए संदेश लेकर जब उद्धव जी को व्रज में भेज रहे थे, उस समय भगवान उद्धव से कहते हैं गोपियों के बारे में संदेश देते हुए, ताह मनमनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देही का। गोपिया कैसी है? मनमनस्का, उसका मन निरंतर मुझ में लगा रहता है। मत प्राणा, उसने अपने प्राणों को मुझ में लगा रखा है। और मदर्थे त्यक्त देही का, उसने अपने देह की सारी क्रियाओं को मेरे लिए अर्पित कर दिया है। अर्थात गोपियां शरीर से कुछ भी कार्य अपने लिए नहीं करती है, मदर थे मेरे लिए उसकी देह की एक एक क्रियाएं होती है। कृष्ण सेवा गोपियों का जीवन है। और तीसरा कृष्ण कथा, परस्पर मिलकर गोपियां जब भी मिलते हैं तो कृष्ण के बारे में ही चर्चा होती है। भागवत में जितने भी गीत है, गोपी गीत है, प्रणय गीत है, भ्रमर गीत है, वेणु गीत है, ये सारे गीत गोपियों के बीच में हुई कृष्ण कथा ही है, कृष्ण चर्चा ही है। और भक्त का लक्षण ही भगवान ने यही बताया है, मत चित्ता मद्गत प्राण बोधयंतः परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कृष्ण कहते कि जिसका मन मुझ में लगा है, ऐसे भक्त जब मिलते हैं तो बोधयंतः परस्परम, मेरे बारे में ही एक दूसरे को उपदेश देते हैं और मेरी ही कथा मेरी ही चर्चा करके उसी में संतुष्ट होते हैं और उसी में सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन कैसे कौन से भक्त परस्पर कृष्ण चर्चा करते हैं? तो कहते मत चित्ता, जिसका मन मुझ में लगा हुआ है ऐसे भक्त जब मिलते हैं तब उसके बीच में मेरी चर्चा होती है। जिसका मन विषयों में लगा है ऐसे भक्त मिलते हैं तो उसके बीच में कृष्ण कथा नहीं होती है, दुनियादारी की चर्चा होती है। भक्त तो है लेकिन मन कहाँ लगा है? तीन प्रकार के भक्त कहे हैं, विषयी भक्त, सिद्ध भक्त और साधक भक्त। विषयी वो है जो भक्ति तो कर रहे लेकिन मन विषयों में लगा है, संसार की सुख सुविधाओं को भोगने में, उसे अच्छे अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छा अच्छा खाना पीना चाहिए, अच्छे से अच्छी सुविधा चाहिए। तो ऐसे भक्तों को विषयी भक्त भागवत ने कहा है। और ऐसे भक्त मिलते हैं तो फिर उसके भी चर्चा भी विषयों की ही होती है, या तो दूसरे भक्तों की चर्चा होती है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अच्छी चर्चा होने की बात तो दूर रही, पर ऊपर से दूसरे की निंदा भी हो जाती है। इसलिए भक्तों का संग करना है तो कैसे भक्तों का संग करना चाहिए? रूप गोस्वामी ने इस बाबत में उपदेशामृत में हम भक्तों को सावधान किया है। जिसके मुख में कृष्ण नाम है उसको तो मन से आदर देना चाहिए, लेकिन दीक्षास्ति चेत प्रणति भी, दीक्षा लेकर भजन में लगे है उसको शरीर से प्रणाम करना चाहिए। और भजंत ईशम, भजन में जो विघ्न है आगे बढ़े हुए है ऐसे भक्तों की शुश्रूषा सेवा करनी चाहिए। परंतु संग किसका करना चाहिए? अन्य निंदादि शून्य हदि मिप्सित संग लब्ध्या, जिसके हृदय में अन्य के प्रति निंदा की भावना नहीं है, अन्य के प्रति द्वेष और निंदा नहीं है, ऐसे भक्तों का ही संग करना चाहिए। और प्रहलाद जी ने भी इस बारे में कहा है, संगेन साधु भक्तानाम, संग करना चाहिए, सिर्फ भक्तों का संग नहीं कहा, क्या कहा? संगेन साधु भक्तानाम, साधु भक्तों का संग करना चाहिए। साधु भक्त अर्थात जो निंदा ईर्ष्या द्वेष इत्यादि दोषों से रहित है, जिसके जीवन में साधुता है, ऐसे भक्तों का संग करेंगे तब लाभ होगा। तो यहां पर गोपियां जिसके मिलने पर परस्पर कृष्ण कथा के सिवा और कुछ करती ही नहीं है, यहां तक भ्रमर गीत में राधा रानी ने कहा है कि हे उद्धव, हे भ्रमर, हम कृष्ण के बिना तो जैसे तैसे जीवन धारण कर रही है, क्योंकि हमारे पास उसकी कथा है, कृष्ण कथा हमारे जीवन का अवलंबन है। दुस्त्यजास्तत कथार्था, हम कृष्ण के बिना रह सकती है लेकिन कृष्ण कथा के बिना हम नहीं रह सकती है। कथा मात्रेक जीविनः, कृष्ण कथा ही गोपियों के लिए जीवन है। और उद्धव जी ने वहां पर गए थे कृष्ण का संदेश लेकर दो चार दिन के लिए, लेकिन अनेक महीनों तक वहां पर रहे, और वहां पर रहकर उद्धव जी ने जो देखा है उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि गोपियों के अंदर कृष्ण कथा में जो रुचि है, कृष्ण कथा गोपियों के जीवन में कितनी मिली हुई है उसका वर्णन करते हुए उद्धव जी कहते, एताह परम तनुभृताम भुवि गोपवध्व गोविंद एव निखिलात्म निरूढ़ भावा एता परम तनु भृताम भुवि गोप वध्व। इस पृथ्वी पर जितने भी शरीरदारी है उन सब में परह सबसे श्रेष्ठ ये गोपिया है, गोप वध्वे। क्यों? क्योंकि गोविंद एव निखिलात्म निरूढ़ भावा, गोविंद की कथा में उसको इतनी रुचि है, इतनी आसक्ति है, इतनी प्रीति है कि वांछन्ति भव भिया, ऐसी कथा में प्रीति हो जाए ऐसी इच्छा भव भिया, संसार से भयभीत मुमुक्षु लोग इच्छा करते हैं कि हमें भी कृष्ण कथा में ऐसी आसक्ति हो जाए। वांछन्ति भव भिया मुनयः, और बड़े बड़े मुनि भी इच्छा करते हैं कि कृष्ण कथा में हमारी आसक्ति हो जाए। वयम च, उद्धव जी कहते कि हम जैसे भक्त भी हमेशा ऐसी वांछा रखते हैं कि कब ऐसा दिन आएगा कि कृष्ण की कथा में हमारी आसक्ति हो जाए, प्रीति हो जाए। और अगर एक बार कृष्ण कथा में रस आ गया तो कहते किम ब्रह्म जन्म बिरनंत कथा रसस्य। एक बार अनंत भगवान कृष्ण की कथा में रस प्राप्त हो गया तो किम ब्रह्म जन्म भी, तो ब्रह्मा जी का जन्म भी उसके पास कौन सी गिनती में है, ब्रह्मा जी का जन्म भी उसके पास तुच्छ है। अगर एक बार कृष्ण कथा में हमें आसक्ति हो गई, रस मिल गया, और ऐसी कृष्ण कथा में प्रीति इन गोपियों के अंदर है, धन्या व्रजस्तिया। तो ये तीन ही क्रियाएं गोपियों के जीवन में हैं, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम और कृष्ण सेवा। और प्रभुपाद जी की कृपा से हमें तीनों ही वस्तुएं मिली हुई है। कृष्ण नाम के रूप में हमें महामंत्र मिला है, कृष्ण कथा के रूप में प्रभुपाद जी ने हमें ग्रंथ दिए है, भागवत क्लास दिया है, भगवत गीता क्लास दिया है, और कृष्ण सेवा के लिए हमें राधा रास बिहारी दिए हैं, अनेक अर्चा विग्रह दिए हैं, और उससे भी आगे प्रचार के कार्य, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि सेवाएं दी हैं। तो इसलिए हम लोगों को और कुछ नया करना नहीं है, नया कुछ आविष्कार नहीं करना है, जो हमें प्रभुपाद जी ने दिया है उसी को हम कैसे अच्छे से कर सके, निरपराध भाव से कर सके, बस इसी में प्रयास लगाना है। और इन तीन साधनों में भी देखा जाए तो अन्य दो साधन है, अन्य दो क्रियाएं है, उसका आधार है कथा पर। जितनी ही हम कथा श्रवण में अधिक रुचि रखेंगे उतना ही अच्छे से नाम जप भी कर पाएंगे, और कथा जितनी श्रवण करेंगे उतने ही हम निरपराध भाव से सेवा भी कर पाएंगे। और ये देखा भी जाता है कि जिन भक्तों की श्रवण में रुचि है वो नाम जप में भी सीरियस होंगे और सेवा में भी आगे होंगे, क्योंकि जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक नाम में हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ेगी, और श्रद्धा नहीं है तब तक जप ठीक से कर नहीं पाएंगे। जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमसे अपराध क्या हो रहे हैं, क्या त्रुटि हो रही है, क्या गलती हो रही है, इस बात को हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे प्रधान है श्रवण में रुचि उत्पन्न करना। भक्ति के सभी अंग अपने आप में पूर्ण है और सब महत्वपूर्ण है, परंतु प्रहलाद जी ने सबसे पहला स्थान श्रवण को इसीलिए दिया कि जितना श्रवण हमारा अच्छा होगा उतने ही हम अन्य भक्ति के अंग को अच्छे से कर पाएंगे। तो गोपिया जिसका जीवन कृष्ण कथा है और परस्पर मिलती है तो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है, और किस प्रकार कृष्ण वेणु बजाते हैं तो उस वेणु का प्रभाव क्या होता है उसका परस्पर मिलकर वर्णन कर रही है। और ये वेणु भगवान कृष्ण की लीला में वंशी वादन बहुत प्रख्यात है। चार विशेष गुण भगवान कृष्ण के अंदर है जो अन्य स्वरूपों में या अन्य अवतारों में भी नहीं है। लीला माधुरी, रूप माधुरी, रास माधुरी और वेणु माधुरी। ठाकुर जी की एक शोभा है वेणु। आप सोचिए कि रास बिहारी खड़े हैं और उसके हाथ में वेणु न होकर चक्र हो सुदर्शन, तो कैसे लगेंगे? कुछ मैचिंग नहीं होगा, अलग दिखेगा। एक संप्रदाय है कहीं ऐसे जो भगवान कृष्ण को योगेश्वर के भाव से भजते हैं, तो वहां पर आप विग्रह देखेंगे तो भगवान कृष्ण खड़े हैं द्विभुज रूप में और एक हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर खड़े हैं ऐसे। अब चतुर्भुज विग्रह है और हाथ में सुदर्शन है तब तो कुछ ठीक है, क्योंकि द्वारका में भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में रहते थे और वहां पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ही रहते थे। इसलिए आज भी आप द्वारका जाएंगे तो वहां पर जितने मंदिर है, जितने भी विग्रह है, सब चतुर्भुज है और सबके हाथ में शंख चक्र शोभा पा रहे हैं। परंतु द्विभुज कृष्ण के हाथ में चक्र हो वो तो कुछ अलग ही लगता है। उसके हाथ में तो जो व्रजेंद्र नंदन कृष्ण है उसके हाथ में बांसुरी की ही शोभा होती है। और जब बांसुरी बजती है, वेणु का नाद कृष्ण करते हैं, तो ब्रह्मा जी की पूरी सृष्टि का क्रम उलट जाता है। कई दिन से हम इस प्रसंग को सुन रहे हैं। जो स्थावर है वह वेणु के नाद से पिघल कर जंगम बन जाते हैं और जो जंगम है यमुना जी इत्यादि का पानी बह रहा है लेकिन वेणु नाद से वो स्तंभित हो जाता है। पत्थर जो जड़ है वेणु के नाद से पिघल कर बहने लगते हैं और आज भी हम उसके प्रमाण को देखते हैं चरण पहाड़ी के रूप में व्रज में, काम्यवन में, नंदगांव में इत्यादि स्थानों पर। जिस पत्थर पर खड़े रहकर कृष्ण वेणु वादन करते थे वो पत्थर पिघल गए और उसके ऊपर कृष्ण के चरण चिन्ह बन गए। शुष्क वस्तु भी आर्द्र हो जाती थी, अर्थात सूखी वस्तुओं में भी रस का संचार हो जाता था। इसलिए गोपिया कहती है कि रंधन समय मां कुरु वेणु रवम। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, कम से कम रसोई के समय तो आप वेणु मत बजाइए। आपकी वेणु के नाद से सूखे लकड़े भी हरे भरे हो जाते हैं, फिर जल नहीं पाते हैं, उससे धुआं ही निकलता है। तो वेणु ध्वनि पर, वेणु नाद पर भक्तों ने बहुत बहुत लिखा है, बहुत बहुत रस लिया है, उसका आस्वादन किया है। कई पद लिखे हैं, कई भजन भी लिखे हैं, कई ग्रंथ भी लिखे हैं। और वेणु का जो आवाज है उसको क्या कहा है? नाद कहा है। तीन प्रकार के आवाज होते हैं, एक शब्द, दूसरा स्वर और तीसरा नाद। शब्द जो है वो मुख से निकलता है, स्वर है वो कंठ से निकलता है और नाद उसे कहते हैं जो नाभि से निकलता है। जैसे शंख नाद, शंख की नाभि से जिसमें गंभीरता होती है और आवाज बहुत बड़ा होता है। मेघों की गड़गड़ाहट को भी हम क्या कहते हैं? मेघ नाद, गंभीर और प्रचंड आवाज होता है। जो मेरे जैसे सीखने वाले गायक है उसका, उसके मुख से जो गीत निकलता है, शब्द निकलते, वो मुख से निकलते हैं। लेकिन जो अच्छे से गाना जानते हैं, गायक है, संगीत को जानने वाले हैं, वो गाते हैं तो उसके कंठ से शब्द निकलते हैं जिसको स्वर कहते हैं। लेकिन उससे भी आगे पहुंचे हुए है संगीत विद्या में, बहुत सिद्ध हो चुके, तो ऐसे जब ऐसे लोग गाते हैं तो नाभि से आवाज को प्रकट करते हैं और उस आवाज में भाव होता है, गांभीर्य होता है और आवाज भी बहुत बड़ा होता है। सुध जी नेमिषारण्य में कथा कर रहे थे, सुखदेव जी गंगा तट पर परीक्षित जी की सभा में कथा कर रहे थे, तो वहां पर कोई लाउड स्पीकर नहीं था और श्रोता 100, 200, 500 भी नहीं थे, हजारों की संख्या में 88,000 ऋषि कथा सुनने वाले थे। अब कैसे सब तक आवाज पहुंचेगी? तो नाद ब्रह्म से आवाज प्रकट होती थी, इसलिए गंभीर और मेघ के समान, जैसे मेघ की आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है, तो इसलिए यहां पर वेणु का नाद कहा है। अर्थात शब्द आवाज इतना बड़ा होता था कि दूर दूर तक वो आवाज पहुंचता था। इसलिए भगवान कृष्ण जब गोचारण से घर पर वापस जाते थे उस समय गायों को बुलाने के लिए वेणु नाद करते थे, और गोपियों का जब आह्वान किया वंशीवट से रास लीला के लिए तो भी वेणु का नाद किया, ताकि दूर दूर तक उस आवाज को श्रवण किया जाए। तो यहां पर गोपियों के द्वारा जो चर्चा हुई है वेणु गीत के रूप में, जिसमें चक्रवर्ती पाद लिख रहे कि आज का जो श्लोक है, अथ अन्य युथस्था स्व सखी प्रति वेणु हेतुकम स्व मोहम एव आहु। एक गोपी अपने युथ की दूसरी गोपी से अर्थात अपनी सखी से कह रही है कि कृष्ण की वेणु जब बजती है तो मेरी क्या दशा होती है, स्व मोहकम वेणु के ही ध्वनि सुनकर स्वयं की क्या दशा होती है, उसी का वर्णन गोपी अपने सखी के सामने कर रही है। वो कहती है निज पदाब्ज दलेर ध्वज वज्र निरजांकुश विचित्र ललामी। निज पदाब्ज दले, कृष्ण के चरण कमल कैसे है, कमल की पंखड़ियों की तरह कोमल है, और उसमें ध्वज वज्र नीरज अंकुश आदि विचित्र ललामे, ललामे अर्थात चिन्हानी, जिसमें सुंदर सुंदर चिन्ह है। कैसे? ध्वज वज्र अंकुश पद्म इत्यादि। रास बिहारी के चरणों में कितने चिन्ह है आप लोग जानते हैं? रास बिहारी के चरणों में लेफ्ट चरण में, हम थोड़ा उस पर चिंतन करें, ध्यान करें, तो सबसे नीचे मीन है, मछली है लेफ्ट चरण में, उससे ऊपर अर्ध चंद्रमा है, अर्ध चंद्रमा के ऊपर डबल ट्रायंगल है, और डबल ट्रायंगल के दोनों ओर दो दो कलश है, टोटल चार कलश है, दो इधर दो इधर। कलश है तो उसमें कुछ भरा भी होगा, कलश है तो उसमें कुछ स्वाभाविक है, 9 बजने को आए तो कुछ जूस बूस हो तो अच्छा रहेगा। तो उस कलश में रस अमृत भरा है, कौन सा अमृत है? भक्ति रसामृत, भक्ति रस रूपी अमृत भरा हुआ है। उन कलश का ध्यान करने से, कृष्ण के चरणों में जो ये चार कलश है उसका ध्यान करने से भक्ति रस रूपी अमृत प्राप्त होता है। उससे ऊपर गोखुर है, गाय के चरण का चिन्ह, उससे ऊपर एक धनुष है प्रत्यंचा से रहित, अर्थात उसमें प्रत्यंचा नहीं है, सिर्फ धनुष ही है, और उससे ऊपर बीच की उंगली के नीचे डबल वर्तुल है, डबल अर्थात एक अंदर वर्तुल है और एक बाहर वर्तुल है, जो आकाश का प्रतीक है। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, अंदर और बाहर, जैसे आकाश अंतर और बाह्य सब जगह पर व्याप्त है, इस बात को दिखाने के लिए डबल वर्तुल है, जिसके बारे में लिखा है कि उसका ध्यान करने से जीव की सर्वत्र अंदर बाहर सर्वत्र आकाश की तरह व्याप्त भगवान कृष्ण रक्षा करते हैं, और अंगुष्ठ के नीचे शंख है, ये लेफ्ट चरण हुआ। फिर राइट चरण में सबसे नीचे एडी में अष्टकोण है, और अष्टकोण की चार दिशाओं में चार स्वस्तिक है, और चार कोणों में चार जामुन फल है। और फिर राइट चरण में अंगुष्ठ से नीचे जव है, उससे नीचे चक्र है, और उससे नीचे छत्र है। अंगुष्ठ और पहली उंगली के बीच में से एक सौभाग्य रेखा निकली है, और फिर प्रथम उंगली, प्रथम और द्वितीय दोनों उंगली के नीचे पद्म है, कमल, और कमल के नीचे ध्वजा है, और लास्ट में छोटी उंगली के नीचे अंकुश है। और जिसके बारे में लिखा है कि जैसे बड़े और मदमस्त हाथी को महावत अंकुश से, छोटे से अंकुश से अपने वश में कर लेता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण के चरणों में जो अंकुश है उसका ध्यान करने से जीव मन रूपी पागल हाथी को भी वश में कर सकता है। और उस अंकुश के नीचे वज्र है। तो ये जो रास बिहारी के चरण है, और हकीकत में भक्तों के लिए ये ध्यान का विषय है। भगवान के चरण संचिंतयत भगवतस तस्चरणारविंदम। कपिल देव ने कहा है कि भगवान के चरणों का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और ध्यान दो ही विषय का होगा इस संसार में, या तो विषयों का ध्यान होगा या तो भगवान के चरणों का ध्यान होगा। अब विषयों का ध्यान करेंगे तो फल क्या आएगा? ज्ञायतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात बुद्धि भ्रंश, बुद्धि भ्रंशात प्रणश्यति। फल क्या आया? प्रणश्यति। ज्ञायतो विषयान, विषयों का ध्यान करने का फल आया प्रणश्यति, अंत में विनाश होगा। और कृष्ण के चरणों का ध्यान करेंगे तो फल क्या आएगा? करभाजन मुनि बता रहे, ध्येयः सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नृतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ध्येयः सदा, कृष्ण के चरणों चरण कैसे है? ध्येयः सदा, सदा ध्यान करने योग्य है। इसमें चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि नात्र काल देश नियम। भगवान के चरणों का ध्यान करना है तो उसमें कोई काल देश कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। जहां पर है जैसी स्थिति में बस आंखें बंद करके रास बिहारी के चरणों में क्या क्या चिन्ह है उसका स्मरण करने लगे, ध्यान हो गया। जैसे नाम में कोई काल की या देश की बाधा नहीं है, ऐसे भगवान के ध्यान में स्मरण में भी कोई बाधा नहीं। परिभवग्नम अर्थात उस चरणों का आश्रय लेने से, ध्यान करने से जीव का कहीं पर भी परिभवग्नम अर्थात पराभव नहीं होगा, पराजित नहीं होंगे। खास करके इंद्रिया उसे पराजित नहीं कर पाएगी, और कुटुंबादि तिरस्कारम हन्ति, कुटुंब इत्यादि में भी उसका पराजय नहीं होगा, अर्थात कभी तिरस्कार नहीं होगा। और हम देखते भी है कहीं जगह पर के कुटुंब में से कोई एक व्यक्ति भक्त बन जाता है, साधु बन जाता है, तो कुटुंब के बड़े बड़े वडिल भी उसका आदर करते हैं, यहां तक के प्रणाम भी करते हैं। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से न संसार में, न माया से, न इंद्रियों से कहीं पर भी पराजय होती है जीव की। अभीष्ट दोहम कहते मनोरथ पूरकम, उस चरणों का आश्रय लेने से, ध्यान करने से जीव के सारे मनोरथों की पूर्ति होती है। तीर्थास्पदम, जो तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले है, गंगा आद्य आश्रयत्वेव, गंगा इत्यादि पवित्र तीर्थों का भी आश्रय भगवान कृष्ण के चरण है। और कहते कि ध्यान मात्रेण गंगादि सर्व तीर्थ स्नानम सिद्ध है, उस चरणों का ध्यान करने मात्र से गंगा इत्यादि समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। अब कितना बड़ा लाभ है, गंगा जी, यमुना जी, या फिर प्रयागराज, गंगा सागर, इन सब जगह पर जाकर स्नान करना है तो कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितने दिन लगेंगे। और मान लीजिए कि हम कहीं पर तीर्थों में चले भी गए तो भी कलयुग का प्रभाव है कि वहां पर जाने पर भी हम तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चक्रवर्ती पाद इस शब्द पर लिखते हैं कि कलो द्रव्य देश क्रियादि जनितम दुर्वारम अपावित्रम न शक्नियम। कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि सर्वत्र अपवित्रता अशुद्धि फैली हुई है, इसलिए कोई भी द्रव्यमय क्रिया करेंगे तो उसको उसका सफल होना बहुत मुश्किल है, दुर्वारम अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी द्रव्य शुद्ध नहीं है। मान लीजिए यज्ञ करना है, यज्ञ के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, शुद्ध पवित्र वस्तुएं कहां से लाएंगे, तो द्रव्य में कोई क्रिया होगी ही नहीं जो हम पूर्ण रूप से कर सके। देश और कोई स्थान कलयुग में ऐसा पवित्र नहीं रह गया है कि जहां पर जाकर हम शुद्ध हो जाए, क्योंकि यवनार उदास तीर्था तीर्थ सारस ततः गतो, यवनों ने, पाप करने वाले जीवों ने तीर्थ में अपना निवास स्थान बना लिया है, व्यापारी लोग वहां पर बस गए, इसलिए तीर्थों का सार भी चला गया है। और तीर्थ में जाने पर भी तीर्थ यात्रा का नियम है कि किसी भी तीर्थ में जाकर हम उसका पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो 3 रात्रि तक वहां रहना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात है कि तीर्थ में जाने पहले दिन वहां पर जाकर उपवास करना चाहिए। अब बताइए हमारा क्या होता है, जाते ही पहले हमें स्नान करके रूम मिली, पहले भोजन चाहिए, फिर हम दर्शन के लिए स्नान के लिए निकलते हैं। अब ऐसी स्थिति में इन सब वस्तुओं को, क्रियाओं को कर हम फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कहते दुर्वारम, बहुत मुश्किल है, परंतु कृष्ण के चरणों का स्मरण करने से, ध्यान करने मात्र से तीर्थास्पदम, समस्त तीर्थों में गंगा आदि सर्व तीर्थ स्नान सिद्ध, सभी बड़े बड़े तीर्थों में स्नान करने का लाभ बैठे बैठे ही मिल जाएगा। कितना बड़ा लाभ है। और कहते कि शिव विरंचि नृतम, शिव जी और ब्रह्मा जी जैसे महा महत्तम महान पुरुष भी भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। ननु महत्तमो तो कृतार्थम एव किमर्थम ताभ्याम रुतम, शिव जी ब्रह्मा जी जो इतने समर्थ है, इतने महान है, वो लोग क्यों भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, तत्राह शरण्यम आश्रय योग्यम, क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण है वो आश्रय लेने योग्य है। आश्रय उसका लिया जाता है जो सब प्रकार से अपने शरणागत की, अपने आश्रित की रक्षा कर सके। माता पृथ्वी जब जब अपने ऊपर पाप का बोझ बढ़ता है तो ऋषियों के पास जाती है कि हे ऋषियों, आप सब अपनी तपस्या के बल से मेरे दुख को, मेरी पीड़ा को नष्ट करके मेरी रक्षा कीजिए। ऋषि कहते कि देवी, हम इसमें समर्थ नहीं है, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी जो दशा है वही हमारी स्थिति है। तो सब ऋषि मुनि माता पृथ्वी को लेकर देवताओं के पास जाती है और देवताओं के सामने अपने दुख का निवेदन करती है। तो देवता लोग कहते कि देवी, हम भी भागे फिर रहे हैं अपनी रक्षा के लिए, हम स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, हम स्वयं डरे हुए हैं, आपकी रक्षा कैसे करेंगे, एक काम करते हम लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। तो पृथ्वी सब ऋषि मुनि देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के सामने अपना दुख निवेदन करते हैं, तो ब्रह्मा जी भी कहते कि तोर गति सो मोर गति, आप सबकी जो दशा है वही मेरी दशा है, मैं भी आपकी कैसे रक्षा करूं। चलो हम सब मिलकर क्षीर समुद्र के तट पर जाते हैं और तत्र गत्वा देव देव जगन्नाथम वृषा कपिम, भगवान जगन्नाथ को पुकारते हैं क्योंकि वही सबके रक्षक है, रक्षा करने में वही समर्थ है। और इसलिए यहां पर कहा है कि शरण्यम आश्रय लेने योग्य मात्र भगवान कृष्ण के चरण है, वही जीव को आश्रय दे सकते हैं। और इसीलिए तो सामान्य जीवों की क्या बात करें, ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे समर्थ महापुरुष भी भगवान कृष्ण के चरणों में नूतम नतमस्तक होते हैं, स्तुति करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं। और भृत्यार्ति हम अपने भक्तों की आरती को दुख को नष्ट करने वाले हैं वो चरण, जिसमें श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि केवलम आगंतुक आरती मात्र न हंती, भगवान अपने भृत्यों की सेवकों की आरती अर्थात दुख कष्ट पीड़ा का हरण करते हैं, केवल आगंतुक मात्र न आरती हंती अर्थात कोई घूमते फिरते आ गया दर्शन करने के लिए, कभी कभी मंदिर आ जाता है भगवान के सामने, तो ऐसे ठाकुर जी उसके दुख कष्ट को दूर नहीं करेंगे। भृत्य जो उसकी सेवा में लगे है उसके कष्ट को, उसकी पीड़ा को, उसकी आरती को नष्ट करते हैं। इसलिए हम जन्म के प्रकरण में भी सुनते हैं कि भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम अभयंकर, भगवान विश्वात्मा है लेकिन अभय सबको नहीं करते, समस्त विश्व के जीवों के अंदर परमात्मा रूप से बसे हैं लेकिन फिर भी भक्ता नाम अभयंकर, जो उसकी भक्ति में लगे हैं उसी को अभय देते हैं, सबको भयमुक्त नहीं करते हैं। प्रणत पाल शरणागतों का सब प्रकार से पालन करते हैं, जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, अब सब भक्तों के लिए भी लिए ही उसके बारे में ही हम सोचे कि संसार में 10 में से 7-8 लोग ऐसे जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते, परिश्रम करते हैं लेकिन फिर भी न तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं और न तो ठीक से भोजन कर पाते हैं, लेकिन यहां पर जिसने रास बिहारी के चरणों का आश्रय लिया है, बताए व्यापार के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी आश्रय मात्र से रास बिहारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा भोजन मिल रहा है, ये भगवान के चरणों के आश्रय का फल है। हमारे यहाँ पर सोसाइटी में नवरात्रि का उत्सव चल रहा है तो गरबा, तो उसमें वहां पर एक व्यक्ति ने गरबा के बाद डांडियास के बाद 5 दिन तक नाश्ता स्पॉन्सर किया वहां के रहने वाले एक व्यक्ति ने, तो जो सोसाइटी का जो ग्रुप है उसमें सब लोग उन व्यक्ति का नाम लिखकर उसकी जय हो मैसेज भेज रहे थे, 5 दिन का नाश्ता प्रसाद स्पॉन्सर किया इसलिए सब मैसेज भेज रहे थे उसकी जय हो, तो फिर हमसे रहा नहीं गया तो हमने मैसेज डाला उसमें कि भाई जिस भगवान ने हमें जन्म से लेकर आज तक 3 टाइम भरपेट भोजन दिया है और आगे भी देते रहेंगे, उस भगवान की भी ऐसे ही जय जय बोलते रहना, जय जयकार करते रहना। तो कहते कि ऐसे जो चरण चिन्ह है गोपी, यहां पर हम चर्चा कर रहे थे कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि सखी कृष्ण के चरण जिसमें ध्वज वज्र अंकुश इत्यादि सुंदर सुंदर चिन्ह शोभायमान है और ऐसे चरणों से गोष्ठ गमन समय जब कृष्ण गोचारण से वापस गोष्ठ में आते हैं, अर्थात ये चर्चा है वो भगवान सुबह में वृंदावन में गोचारण के लिए जाते हैं वह प्रसंग नहीं है, वापस आते समय जो वर्णन हो रहा है उसका उसके बारे में कहा है। गोष्ट गमन समय जब वापस आते हैं गायों को लेकर, तो अग्रतो गताम गवानाम खुरतोदम, तो आगे आगे जो गाय चल रही है और गाय के खुर आक्रमण व्यथाम, उस खुर गायों के खुर के स्पर्श से आघात से पृथ्वी को व्यथा पीड़ा होती है। व्रजभुवः, व्रज की भूमि को गायों के खुर के आक्रमण से, उसके प्रहार से, स्पर्श से जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को पीछे पीछे गायों के पीछे चलते हुए कृष्ण अपने कोमल चरणों के स्पर्श से स्वचरणाम्बज न्यासेन शमयतुम, अपने कोमल ध्वज वज्र अंकुश इत्यादि चिन्हों से युक्त चरणों के स्पर्श से पृथ्वी की सारी पीड़ा को हर लेते हैं, सारी पीड़ा को समाप्त कर देते हैं। और उस समय गोपी कहती कि हे सखी, कृष्ण गोष्ठ में आते समय गायों के पीछे चलते हुए वेणु बजा रहे हैं, और कैसे चल रहे हैं? तो कहते हैं कि सूर्य वर्षमणि, हाथी के समान चलते हुए आ रहे हैं। चाल कैसी है कृष्ण की? हाथी के समान, मीन्स हाथी कैसे चलता है? अपनी मस्ती में डोलते हुए चलता है। हाथी निकलता है, आप लोगों ने देखा है, किसी सोसाइटी में से निकलेगा तो सोसाइटी में जितने कुत्ते वो सब आ जाएंगे और उसके पीछे भौंकेंगे, लेकिन हाथी उसकी ओर देखता भी नहीं है, वो तो अपनी मस्ती में चलता रहता है डोलते हुए। हमारे मीरा रोड मंदिर में 3-4 साल पहले पालकी उत्सव था, उसमें हाथी लाए थे, तो पालकी तो ऊपर सवार नहीं कर पाए, ठाकुर जी को चढ़ाना था, लेकिन पकड़ेगा कौन वहां पर? तो फिर हमारे मीरा रोड मंदिर के प्रेसिडेंट कमलोचन प्रभु ऊपर उसको ऊपर बैठा दिए। अब हाथी एक तो विशाल काय था और उस पर भी कमलोचन प्रभु भी पहाड़ी शरीर वाले, हाथी के ऊपर हाथी तो नहीं कह सकते, और कहे तो कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि भागवत में कृष्ण बलराम को भी हाथी की उपमा दी गई है। मथुरा में दोनों भाई चल रहे थे तो वहां पर दोनों कुब्जा ने दोनों का श्रृंगार किया है, अंगराग लगाकर सुंदर बनाया है, और धोबी के उस कंस के उस धोबी को मारकर कीमती वस्त्र पहन लिए है, दर्जी ने उसका फिटिंग कर दिया है, तो दोनों की शोभा कैसी हो रही है? सुखदेव जी कहते कि पर्वणी यथा बाल गजो, जैसे पर्व के समय अर्थात किसी उत्सव के समय दो छोटे छोटे हाथी के बच्चे को सजाया हो और उसकी जैसी शोभा होती है, ऐसी कृष्ण बलराम की शोभा हो रही है। जी गोस्वामी यहाँ पर लिखते हैं कि वैसे तो कृष्ण की स्वाभाविक चाल ही गज के समान मदमस्त अपनी मस्ती में चलते है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे इसलिए चल रहे है कि दो कार्य एक साथ करना है, वेणु नाद भी करना है और चलना भी है। अब वेणु बजानी है और स्पीड से चलेंगे तो वेणु ठीक से बजा नहीं पाएंगे। नगर संकीर्तन में जाते हैं तो जो भक्त लोग मृदंग बजाते हैं, अब धीरे धीरे चलने पर तो मृदंग अच्छे से बजा पाएंगे, लेकिन दौड़ते हुए चलेंगे तो कैसे बजाएंगे? बजाएंगे तो भी ताल ठीक से बैठेगा नहीं, तो इसलिए वेणु बजाना है। तो कृष्ण धीरे धीरे मंद गति से हाथी की चाल से चल रहे हैं, और वह गोपी कह रही है कि हे सखी, इस प्रकार कृष्ण जब गोष्ठ में वापस आते हैं, हाथी की तरह मंद गति से चलते हुए वेणु नाद करते हुए हमारी ओर जब सविलास वीक्षणेन तिरछी चितवन से देखते हैं, तो उसकी दृष्टि पड़ते ही मनोभव वेगा, हमारा मन काम के वश में हो जाता है, अर्थात कृष्ण की दृष्टि मात्र से हमारे अंदर प्रेम इतना बढ़ जाता है, प्रेम की ऐसी बाढ़ आती है कि वयम कुजा वृक्षास तेषाम इव गति गमिता, हमारी स्थिति कुज अर्थात वृक्ष जैसी जड़ हो जाता है, प्रेम के आवेग में शरीर वृक्ष के समान जड़ बन जाता है, एकदम शिथिल बन जाता है। और कहते सच्चो, और ये सखी बिल्कुल सही बात है कि कृष्ण की एक दृष्टि मात्र से हमारा मन, हमारे शरीर की स्थिति बिल्कुल जड़ हो जाती है, इतना मोह उत्पन्न हो जाता है कि कवरम वसनम वान विदामह, हमारे शरीर के ऊपर जो वस्त्र है और जो हमारे केश बंधन है उसका भी हमें ख्याल नहीं रहता है। शरीर की ही सुध-बुध नहीं रहती है तो शरीर के ऊपर जो केश है, जो वस्त्र है, वो अपने स्थान से खिसक जाते हैं, उसका भी हमें ख्याल नहीं रहता है। तो यहां पर इस श्लोक में एक गोपी कृष्ण के वेणु के नाद से स्वयं की जो दशा हो रही है उसी का वर्णन, कि मेरी तो ऐसी स्थिति होती है कृष्ण की वेणु को सुनकर, के प्रेम के आवेग से, काम के आवेग से शरीर जड़ता को प्राप्त हो जाता है और उस समय शरीर की सुध-बुध तो नहीं रहती है लेकिन अपने वस्त्र और केश की भी सुध-बुध नहीं रहती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। यद्यपि विषय तो मेरी योग्यता से ऊपर का है लेकिन फिर भी मैंने कहने का प्रयास किया, तो उसमें प्रसंग के अनुसार कुछ छूट गया हो तो आप भक्त लोग पूर्ति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा। मेरे पास एक प्रश्न है और कुछ कमेंट है। मैं पहले कमेंट सुनाता हूँ और बाद में प्रश्न पूछूंगा। हरि हरि स्मरण करो, हरि चरणारविंद उर धरो, गंगा जमुना सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबन लावे, सुर सब तीर्थ को पाता वहा, हरि कथा भगवे जहा। तीर्थ में जाने पर वहा साधु जनों से हरि कथा सुननी चाहिए, तो यह सबसे फायदे का कार्य है। गंगा भूतल पर नहीं आना चाहते थे, उन्होंने बोला मेरे आने पर मेरे प्रचंड वेग को कौन धारण करेगा, नहीं तो मैं सीधे पृथ्वी को भेदकर पाताल लोक में चली जाऊंगी और सब पापे मेरे में स्नान करने पर पाप से मुक्त हो जाएंगे लेकिन मैं पाप से काले पड़ जाऊंगे, तब मेरा क्या होगा। उत्तर में बताया भगवान शिव जी अपने सर पर आपका वेग धारण करेंगे और साधुजनों के चरणों का स्पर्श होते ही आप पाप से मुक्त हो जाओगी। तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि, प्रभु के भक्तों के चरणों में जो समर्पण करते हैं वो पतित व्यक्ति भी पावन हो सकते हैं। अब मेरा प्रश्न यह, कमेंट समझ में आया सबके, समझे बराबर, ध्यान से सुनोगे? अच्छा ठीक है, अभी प्रश्न पूछता हूँ। प्रभु जब वेणु वादन करते हैं तो उसमें क्या गाते हैं? वापिस, प्रभु जब वेणु वादन करते हैं तो उसमें क्या गाते हैं ये बताइए आप।
प्रभु जी परम पूज्य तमाल कृष्ण प्रभु बैठे वो बताएंगे।
कोई भी जो उत्तर दे सकता है माइक लीजिए।
वैसे तो सुना है कि राधे राधे गाते हैं।
वेणु वादन में भगवान कृष्ण वेणु बजाते हैं तो गोपियों के नाम लेकर के पुकार रहे हैं, उनके गुणों को भी गाते हैं। भक्त भगवान के गुणों का बखान करते हैं, गोपियाँ और भगवान उनके गुणों को बखान करते हैं और अपने स्वरूप में भी वो आनंदित रहते हैं। वो स्वरूपानंद है। गोपियों ने जो गीत गाया है भगवान के प्रति उसको हम वेणु गीत बोलते हैं और भगवान वेणु बजा रहे हैं तो गोपियों को नाम लेकर के पुकार रहे हैं और गोपियों को ऐसा लगा कि मुझे जैसे कोई रस्सी बांध करके मुझे खींच रहा हो, ये भाव है उसमें। हरे कृष्ण।
जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद सभी भक्तों का।